मैं उमाशंकर अग्रवाल आप सभी आदरणीय प्राध्यापकों का बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आज आपके प्रश्न होंगे और आदरणीय दीदी जी उनका समाधान उनका उत्तर आपको देंगी। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विदर्भ सब जोन इंचार्ज परम आदरणीय राजयोगिनी बी के पुष्परानी दीदी जी। आपका जीवन 14 वर्ष की आयु से ब्रह्म कुमारी केंद्र में समर्पित रहा है और उसके बाद गत 56 वर्षों से दीदी जी ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की है। समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने का कार्य आदरणीय दीदी जी ने किया है। हम बहुत विनम्रता से दीदी जी को प्रणाम करते हैं। दीदी जी ने विदर्भ विभाग में जब से पदभार संभाला तब से लेकर आज तक अनेक सेवा केंद्रों की रचना की। इन अनेक सेवा केंद्रों में दीदी जी के सशक्त मार्गदर्शन में बहुत सी बहनें आदरणीय दीदियां यहां पे कार्यरत हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ब्रह्म कुमारी केंद्र में आदरणीय दीदी जी के नेतृत्व में न केवल शहरों में बल्कि गांव गांव में किसानों के बीच जाकर मजदूरों के बीच जाकर उनमें आत्मस्मृति जगाने का कार्य किया है और निरंतर ये कार्य यहां पर चल रहा है। और आदरणीय दीदी जी आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। समाज का वह वर्ग जो विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, समाज का वह वर्ग जो महाविद्यालयीन स्तर के ऊपर में अपनी शिक्षा से सबको गौरवान्वित करता है, सबको आगे बढ़ाता है, उत्प्रेरित करता है कि वे आगे की अपनी दिशा निर्धारित करें। सभी प्रोफेसर्स यहां उपस्थित है, प्राध्यापक यहां उपस्थित है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के मार्गदर्शन का कार्यक्रम पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न उपस्थित करेंगे हमारे बीच प्रोफेसर शंकर राव धुर्वे।
प्रश्न है कि मन को शांति कैसे मिले और घर के अंदर शांति रहने के लिए क्या करें।
सबसे पहले अपने ही मन को व्यर्थ से बचाना है, क्योंकि मन में अशांति कब आती है? जब हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, विचार होते हैं, तनाव होता है, तो वह एक बेचैनी सी महसूस होती है। और देखा जाता है कि जो प्रश्न होते हैं मन में, विचार होते हैं, या तो बीती बात के ऊपर हम वो सोच करते हैं, उसके लिए हम पहले अपने आप से बात करें। जो समय बीत गया उसको सोचने से क्या लाभ होगा? वो बीती बात को सोचना ऐसा है जैसे कहते सांप निकल जाए और उसकी लकीर को आप पीट रहे हो। दूसरा होता है भविष्य की चिंता, कैसा होगा, क्या होगा, क्या करें। भविष्य की चिंता भी हमारे वर्तमान को बिगाड़ती है, इसलिए हमारा काम है पहले वर्तमान को हम लोग ठीक करें, भूतकाल को भूल जाएं, भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान को सुधारो, तो आप ही भविष्य हमारा अच्छा होगा, उज्जवल होगा। अब रही परिवार में कैसी शांति रहे, तो वास्तव में देखा जाता है अगर परिवार का कोई भी सदस्य क्रोधित अवस्था में आता है, आता एक है, अशांति पूरे परिवार में होती है। एक जगह अगरबत्ती जल रही है, सुगंधी सब तरफ फैलती है, अगर कहीं अशुद्ध खाना बन रहा है तो दुर्गंध ही सब तरफ फैलती है। इसी तरह से हमारे मन के सुविचार, हमारे मन के कुविचार, इसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है कि जिस प्रकार के विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है। क्रोध है तो अपशब्द है, वो अपशब्द अगले को दुख देते हैं, वातावरण को अशांत कर देते हैं। कभी कभी उसी समय खुशी का वातावरण होता है, एक व्यक्ति के तनाव में आने से पूरा वातावरण खराब हो जाता है। इसलिए स्वयं के ऊपर, परिवार के अंदर शांति का वातावरण हो, इसलिए स्वयं के ऊपर हम पहले नियंत्रण करें, अपने मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाएं, तो सब शांति का वातावरण हो जाएगा।
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कहा जाता है कि मन एकाग्रचित्त होना चाहिए, पहले स्वयं में हम एकाग्रता पैदा करें, मन की वृत्तियों को शांत करें। दीदी जी ने कहा कि विचार अगर अच्छे होंगे, स्पंदन उसके पूरे परिवार को प्रभावित करेंगे। घर में कोई एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उसके क्रोध पर प्रेम से नियंत्रण पाने का प्रयास करें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर के पी कारिया जी को।
मेरा प्रश्न यह है कि ईश्वर और परमात्मा में कोई फर्क है क्या? जैसा राम भगवान या कृष्ण भगवान जैसे हम कहते हैं कि वही परमात्मा है, या वो नहीं है तो और कोई परमात्मा है, निराकार है, तो उनके दर्शन हमें कैसे मिल सकते हैं?
परमात्मा एक है, इसलिए कहते हैं गॉड इज वन। वो है विश्व का कल्याणकारी, इसलिए वो शिव परमात्मा निराकार, जिसका कोई देह की आकृति नहीं है। कि जिसने भी देह लिया, चाहे मानव हो चाहे देवता, उनके माता पिता जरूर है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी जरूर है। तो जो जन्म मरण के चक्कर में आए वो परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? परमात्मा को कहा जाता है अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। तो वो है सबसे न्यारा, निराकार। बाकी जो इस सृष्टि के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया वो कोई देवताएं हैं, कोई महान आत्माएं हैं या कोई कहा जाता है दानव के रूप में भी पैदा होते हैं। देवताएं अर्थात सदा देने वाले दाता, सुख देने वाले न कि दुख देने वाले, जिसको हम याद करते हैं, क्योंकि जो सुख देता है उसको जरूर याद करें। जिनमें दैवी गुण है वो देवता है। जब वो गुणों का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, तो वो मानव के रूप में आते हैं। जब उसका रूप बिगड़ जाता है, गुण खत्म हो जाते, अब गुण जीवन में आ जाते हैं, तो वो मानव रूप में होते भी एक प्रकार से दानव बनता है। इसलिए देवताओं को हम पूछते हैं क्योंकि वो महान है। कहते भी है ना, परम आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा। तो हम अपने शब्दों में ये अलग अलग उसका शब्दों में वर्णन करते हैं। तो इसलिए परमात्मा एक, बाकी सब अनेक। जो गुणों के भंडार है, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देवताएं उनको आज भी अभी याद करते हैं। कभी कोई ऐसा व्यक्ति उनको बहुत अचानक कष्ट के समय मददगार बन जाता है तो भी कहते आप तो मेरे लिए भगवान हो। तो देवताएं जो गुणवान है जिनको याद करते हैं तब श्रद्धा में उनको भगवान और भगवती कहते हैं। याद करेंगे एक परमात्मा को तो हम भी मनुष्य से देवता बन सकते हैं। मनुष्य देवता के कर्त न लागी वार, मनुष्य देवता बन सकते हैं। पर उसके लिए एक लाइन है, नर जो ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नारी जो ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। याद करे परमात्मा को, लक्ष्य रखे लक्ष्मी नारायण बनने का, देवता बनने का, तो हमारे अंदर सद्गुणों का आ जाएंगे, हमारे अंदर वो प्रभाव रहेगा।
बहुत ही सुंदर ये बात दीदी जी की रही। राम कृष्ण ये अवतारी पुरुष हैं, आदरणीय पुरुष हैं, है पुरुष जो जन्म लेता है और अंत में शरीर छोड़ देता है, वो परमात्मा का गुण नहीं है। परमपिता परमात्मा निराकार हैं, एक हैं, ये दीदी जी ने हमें बताया। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुनील एच गणात्रा को।
प्रणाम दीदी जी। जीवन में उपलब्धि ना हो तो जीवन असफल जैसा लगता है, इसलिए जीवन में उपलब्धि के लिए हर व्यक्ति दौड़ता है, लेकिन उपलब्धि पाने के जो मार्ग है वो तनावपूर्ण है। तो क्या उपलब्धि न पाना ठीक है या उपलब्धि पाना ठीक है?
उपलब्धि पाना है तब जीवन निर्वाह हो सकता है, पर वो पाने का रास्ता हमारा ठीक होना चाहिए। कठिन नहीं है, कठिन हम बनाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, एक रास्ता सीधा जा रहा है, एक आड़ा टेढ़ा जा रहा है, अगर हम गलती से भी मोड़दार रास्ते के ऊपर चले जाएंगे तो कठिनाई हमें महसूस होगी। दूसरा कठिनाई कब महसूस होती है? जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, हल हमारे पास नहीं होता है। परंतु अगर हम अपना साथी परमात्मा को बनाए, जिसके लिए गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस निश्चय के साथ परमात्मा को साथी बना करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके, उनकी शिक्षाओं को बुद्धि में रख करके, फिर हम वो कार्य करें तो हमें सफलता सहज और जरूर मिलेगी।
दीदी जी का कथन बहुत ही सुंदर रहा। उपलब्धियां हमें पानी है, बिना उपलब्धि पाए जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, किंतु उपलब्धि तनाव से रहित होनी चाहिए। और तनाव रहित होकर उपलब्धि कैसे प्राप्त करें, उसके लिए परमपिता परमात्मा से लिंक जोड़ने की बात दीदी जी ने कही। परमपिता परमात्मा से लिंक जुड़ता है तो परमपिता परमात्मा हमारे परम और सच्चे साथी होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में एक तो क्या अनेक प्रकार की उपलब्धियों को बिना तनाव में ग्रसित हुए हम पा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर खड़से को।
नमस्ते दीदी, मेरा प्रश्न है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद में लोगों में जो डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन से कैसे ओवरकम किया जा सकता है?
इसके लिए अपने आप को व्यस्त करने का प्रयास करें, क्योंकि पहले सेवा में व्यस्त रहे, बिजी रहे, अब जब खाली हो जाते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है और अपने आप को अशांत सा अनुभव करते हैं। फिर ऐसा लगता है समय मेरा कैसे पास हो, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल एक आज बात है कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। पहले संगठित परिवार थे, कुछ व्यक्ति मिल जाते थे बातचीत करने को, आज वो नहीं होता है। जिस कारण से अधिक अकेलापन महसूस होता है, इसके लिए परमात्मा ने जो समय दिया है, कहते हुए वानप्रस्थ अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। एक तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, कि उस समय शरीर भी काफी वीक हो चुका होता है, उसके लिए पैदल भी जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, कुछ सब उसमें समय बिताइए, कुछ प्रभु चिंतन में समय बिताइए, कुछ आध्यात्मिक किताबें का अभ्यास करने में बिताएंगे, तो आपके मन को काम मिलता जाएगा। क्यों अध्यात्म के लिए कहा जाता है फूड फॉर थॉट, शरीर के लिए वो भोजन जरूरी, मन के लिए ये भोजन जरूरी है। जब इस मार्ग को हम अपनाते हैं तो हमको लगता है हमने अपना समय सफल किया, अपने आप को बिजी रखेंगे। जो व्यक्ति अपने आप को बिजी नहीं रख सकता है, तब कह देता है खाली मन शैतान का घर, व्यर्थ उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए आप थोड़ा वानप्रस्थ में जो कहते हैं ईश्वर का चिंतन करो, उस कार्य में भी अपना समय बिताएं, अपनी दिनचर्या फिक्स करिए। ये समय मेरा घूमने का है, ये भोजन का है, ये आराम का है, ये प्रभु चिंतन का है। समय अपना फिक्स कर दिनचर्या बना देंगे, उस अनुसार चलेंगे तो बहुत फ्रेश अपने आप को अनुभव करेंगे।
अनेक वर्षों तक लगातार सेवा करने के बाद अचानक जब रिक्तता आती है जीवन में, तो स्वाभाविक है कि डिप्रेशन में आदमी चला जाए। लेकिन वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता जिसके पास आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत सारी योजना है, बहुत सारे कार्य हैं। दीदी जी ने कहा वानप्रस्थ अवस्था है ये, आपके पास अनुभवों का भंडार है, उसका सदुपयोग करें, अच्छे और सुंदर विचारों के लिए श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें। अतिरिक्त इसके आप नगर की अनेक सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, उनमें जुड़ें, उनके साथ अपने जीवन के कीमती अनुभवों के निचोड़ को बांटें, ये बहुत ही सुंदर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बापू शेंडे, कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
नमस्ते दीदी जी, आज का मेरा सवाल है कि समाज के अधिकांश लोग जो है वो दुखी और पीड़ित है, तो उसके जीवन में हम कैसे सुख और शांति ला सकते हैं?
उसके लिए पहले हम अपनी जरूर चेकिंग कर ले कि मैं सुख बांटने के लिए तैयार हूं, अर्थात मेरा अपना मन खुशी में है। अगर हमारा मन खुश है, आप जहां भी जाएंगे खुशी सबको अपने आप मिलेगी। फिर फूल नहीं कहता है मेरी सुगंधि लो, वो अपने आप पहुंचाता है। इसलिए पहले हम अपने आप को खुश रखें हर परिस्थिति के अंदर, खुश रहो खुशी बांटो, ये स्लोगन अपना पक्का कर लो। उसके लिए आपको अपने लिए भी कुछ हर समय चेकिंग करते रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कोई परिस्थिति वश मैं दुखी हूं खुद ही और चलाओ दूसरों के दुख दूर करने। और खुश उस व्यक्ति को कहा जाता है जो परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़े। परिस्थिति आए नहीं, पेपर आए नहीं, तो उसको अनुभूत नहीं कहा जाता है। ऐसे को पता है एक कहावत है, एक व्यक्ति उसको बड़ा नशा था, मैं पहलवान हूं। कैसा पहलवान हूं? टांग मार के पापड़ तोड़ू, टांग मार के पापड़ तोड़ू, मरी मक्खी की टांग मरोड़ू, कच्चा तोड़ू सूत, फिर कहलाऊ राजपूत। ऐसा नहीं होता। आज अगर कोई बच्चा आपका बिना पढ़े आपसे मार्क्स मांगने आ जाए, क्या आप देंगे? बेटा मेहनत कर। तो सुखों को हमें अपने आप से खुद उत्पन्न करना है। पेपर आएंगे, उनका सामना करके हमें अपने खुश रहना, वो आपको मदद करेगा। ये अध्यात्म आध्यात्मिकता के स्टडी से ऑटोमेटिक आपका मन प्रसन्न रहेगा और दूसरों को खुशी बांटोगे और उनके दुख दूर कर सकोगे। क्यों नहीं करेंगे जब दुख करता सुख करता परमात्मा की संतान है। सुख करता परमात्मा स्वयं आकर के इस कलयुग को बदल के सत्युग बनाते, सबको सुख देता है। पर वो सत्य की राहों पे जब चलना सीख जाते हैं तो सतयुगी दुनिया में जाके सुख से रह सकते हैं।
दीदी जी ने कहा कि सुगंधित खिला हुआ फूल जिस तरह अपनी सुगंध बिखेरता है, उसी तरह दुखी और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भीतर से खुशियों से भरे रहें, आनंद से भरे रहें। जब हम आनंद से भरे रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाला जो भी होगा, समाज का कोई भी अंग होगा, निश्चित ही उसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ी शांति अवश्य प्राप्त होगी। और इसके लिए एक राजयोग मेडिटेशन बहुत सुंदर विधा है, बहुत सुंदर ये क्रम है, इसे हम पाने का प्रयास करें और हम अपने विद्यार्थियों को भी आज ही इस बात के लिए प्रेरित करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शालिनी लिहितकर।
प्रणाम दीदी जी, मेरा प्रश्न है आज के लिए कि हम अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे ऑफिस में हमें अनेक प्रकार के टेंशन होते हैं, घर में हमें अनेक प्रकार के टेंशन होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी टेंशन में भी हम अपने आप को सुखी जीवन जीने की कला कैसे रख सकते हैं, सुखी जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके लिए आप कृपया मार्गदर्शन करें।
सबसे पहले ऑफिस और घर जो भी बातें आती हैं उसको आप टेंशन मत कहें। क्यों टेंशन टेंशन कहते, टेंशन की मात्रा बढ़ जाती है। वहां आप जिम्मेवारी कहें, पढ़ाने की जिम्मेवारी है, जो आपके पास फाइल्स आती हैं उसको पूरा करने के लिए उसका काम आपकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी शब्द कहते हैं तो हम खुद ही हल्के हो जाते हैं। उस कार्य को हम अपना समझें और हमें टेंशन कब महसूस होता है, बैठे ऑफिस में चिंतन कर रहे, दूसरा फाइल है सामने निपटा नहीं रहे हैं, समय बीत गया विचारों में, फाइल रही वहां की वहां, तो जो हमारी जिम्मेवारी थी नहीं निभा पाए, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि आपका ऑफिसर तो पूछेगा इस काम का क्या हुआ, तो उस घड़ी आपको टेंशन क्रिएट होता है। तो ये हम अपने अलबेलेपन से क्रिएट करते हैं। अब रही परिवार की बात, परिवार में जब आते हो, घर में जब आते हो, वो तो आराम का स्थान है, खुशी का स्थान है, तो वहां टेंशन शब्द कहां से आ गया। समस्या बाहर से आती है, उसको हम स्वीकार ना करें, उसके चिंतन में ना जाएं। काम करना है, मेरा ही घर है, मुझे काम करना, करते जाओ। कोई बाधा आती है, हम रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते में पत्थर आया, तो क्या हम ये कहते कि पत्थर तो क्यों आया, पर पत्थर को क्रॉस करने की हम हिम्मत रखते हैं। तो ऐसी समस्याएं, छोटी छोटी रुकावटें, उसको हम अपनी बाधा न समझे। नदी में जल बहता है, बीच में अनेक प्रकार के पत्थर आते हैं, क्या वो नदी रुकती है। पत्थर आने से और स्पीड से आगे बढ़ती है, स्पीड बढ़ाने के लिए वो आता है। हमें भी वास्तव में अनुभवी बनाने के लिए ये बातें आती हैं, इसलिए बुजुर्गों का महत्व होता है कि वो अनुभवी हैं। कहते जहां न पहुंचे रही वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव वो शक्ति है। तो ये रुकावटें पार करते जाएं, खुशी में जीवन बिताते जाएं, तो हम अनुभवी बन जाएंगे। तो अनुभव का तो बहुत बड़ा खजाना होता है, इसलिए घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, जिम्मेवारी समझें, कार्य समझें, करते चले, बिजी रहो, ये जरूर है, पर उतना इजी रहो। यहां शिकायत है बिजी और इजी। इजी हम नहीं रह पाते हैं, अकड़ के रहते हैं। ऐसे अकड़ के रहिए, हम आपको कहें थोड़ा सफाई तो कर दीजिए, कहां कर पाओगे? रोटी तो बेल दीजिए, कहां बेल पाओगे? ऑफिस में फाइल में लिख रहे थे, ऐसे अकड़ के कहां लिख पाओगे? तो झुकते। इजी व्यक्ति जो है वो हर फील्ड में सफलता पाता है। बुद्धि को हल्का रखो।
तनाव को तनाव की दृष्टि से देखते ही तनाव 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु तनाव को जब हम एक कर्मयोग साधना की दृष्टि से देखते हैं, हमारे विकास के लिए ये एक आवश्यक कार्य है इस दृष्टि से देखते हैं, तो तनाव आधा कम हो जाता है, और आधा जब आप प्रेम से उस कार्य को संपन्न करते हैं तब पूरी तरह से वो तिरोहित हो जाता है। चाहे समाज हो, कॉलेज हो या परिवार हो, तनाव रहित रहने की कला सीखिए, और तनाव रहित रहेंगे आप तो जीवन की हर समस्या को, हर तनाव को सहज रूप से आप कर्तव्य कर्म समझकर उसे पूरा कर सकेंगे। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप अपने भीतर उस ऊर्जा को पाइए, जिस ऊर्जा के कारण आप घर परिवार में भी समय दे सकेंगे, और साथ ही आप अपने कार्यालय का कार्य भी बहुत निपुणता से कर सकेंगे। और इसके साथ ही आज का ये मार्गदर्शन का कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है। आप लोग यहां आए, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर, सारगर्भित और जीवन को संवारने वाले प्रश्न यहां किए। आदरणीय दीदी जी ने उसका बहुत ही सुंदर समाधान किया। सबसे पहले हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके बहुत आभारी हैं, और उसके बाद हम हमारी आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने बहुत ही प्रेम से हमें नम्रता के साथ बहुत सुंदर और प्यारी शिक्षाएं दी, उसके लिए चरणों में अभिवादन करते हुए प्रणाम करते हैं। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में एक बार फिर हम और आप आमने सामने होंगे, दीदी जी होंगी, और ऐसा ही एक सत्र और चलेगा जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने में हमें सहयोग देगा। तब तक के लिए हम आप सबसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।